ഓം ശാന്തി. ഇസ് തപസ്യാ ഭട്ടി മേ അഭി ഹമാരെ സന്മുഖ് ആദരണീയ രാംനാഥ് ഭായ് ജി ഹൈ. ഹം സഭി രാംനാഥ് ഭായ് കാ ബഹുത് ബഹുത് ദിൽ സേ സ്വാഗത് കർത്തേ ഹൈ. സഭി ഹാത്ത് ഹിലായേംഗെ. സഭി बाबा की पांडव सेना में आप श्रेष्ठ पांडव है. विशेष रामनाथ भाई जी मधुबन में ही निवास करते हैं और हेडक्वार्टर से जो विशेष धार्मिक प्रभाग की सेवाएं होती है, बड़े बड़े संतों महंतों आचार्यों की सेवा के लिए आप विशेष निमित्त है. आपकी ज्ञान युक्त तीव्र बुद्धि और मनन चिंतन की कला दिल को आकर्षित करती है और आज आप फिर अपने चिंतन से अमूल्य रत्नों का खजाना इन भाई बहनों को देंगे. ब्राता जी विशेष यहाँ सी और बरेली की तरफ के भाई बहन विशेष भट्टी के लिए पधारे हैं. भाई साहब हमें मास्टर विधाता स्थिति घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे हमें विधाता स्थिति का अभ्यास करना है इस विषय पर बहुत सुंदर ज्ञान रतन देंगे आदरणीय रामनाथ भाई जी.
ओम शांति. बाबा चाहते हैं बच्चे बाप समान बने, बाप के साथ सर्व संबंध जुड़े. कितने संबंध है, इसलिए आप सबको खास देखो मधुबन में भट्टी के लिए बुलाया. नहीं तो सेंटर में भी तो योग क्लास करते हो. दो अच्छे बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, योग्य पात्र है. उनको विशेष क्या दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है. क्यों? कि वो योग्य बने और बाप का नाम क्या करे, रोशन करे. जैसे बाप वैसे बच्चे. सन शोस फादर. जैसे बच्चे को देखकर लोगों को लगेगा ना ये भगवान के बच्चे हैं, खुदा के बंदे हैं. अपने आप भगवान किसी को दिखाई नहीं देता है, कुछ निराकार है. तो उसकी प्रत्यक्षता कैसी होंगी, बच्चों की चाल चलन बोल दृष्टि कर्म संबंध संपर्क इससे होगा ना. किसी के संबंध संपर्क में आओ, किसी से बोल के द्वारा. तब बाबा ने कहा सर्व संबंध जोड़ो. तो सर्व संबंधों में बहुत है. उसमें एक बाबा ने कहा कि मास्टर दाता बनो, है ना. बाप दाता है, देने वाला है. जितने आप देंगे अभी देने के संस्कार डालेंगे तो देवता बनेंगे. तो क्या क्या देंगे, तो बाप कौन है, सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियां है. कितनी शक्तियां है. फिर बाबा के पास क्या है, बाबा ने बच्चों को सर्व खजाने दिए हैं. कितने खजाने दिए हैं, बहुत प्रकार के खजाने दिए ना. तो कितने खजाने, मुख्य सर्वशक्तिवान कहा, सर्व गुणवानी. वो देवता, देवताओं के गुण है. शिव बाबा को गुणवान नहीं कहते, सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी अथॉरिटी. शक्ति है, माइट पावर है. तो कौन सी शक्तियां है, तो शिव बाबा के पास मुख्य आठ शक्तियां है. एक शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर है. ये मुरली में आता है देखना. शिव बाबा कौन, शांति का सागर है. सदा शांति धाम में रहता है, शांति का सागर है. आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है. दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता. देखो भाई जी कहता है बाबा मुझे मुक्ति दे दो, है ना. कोई कहेंगे मुझे जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्ति चाहिए. किससे, बुराइयों से विकारों से. जीवन में है, जीवन छोड़ना नहीं. किसी को शरीर छोड़ के मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति धाम में रहना चाहते हैं, तो बाबा के घर से मिलेगा ना. कौन देंगे, आप सब देंगे ना. फिर बाबा ने कहा बाप कौन, भाग्य विधाता है. बच्चों का भाग्य बनाने के लिए विधि बताता है. बच्चे तन से मन से धन से समय श्वास संकल्प कैसे यूज करना चाहिए सेवा में. अपने आप बाबा ऊपर से भाग्य नहीं देगा. अपना 24 घंटा समय कहां दे रहे हो, धन कहां लगा रहे हो, मन कहां लगा रहे हो, तन किसकी सेवा में लगा रहे हो, उसकी अलग अलग विधियां बताता है, इसलिए भाग्य बनाने की विधि बताता है भाग्य विधाता का। और आठवीं शक्ति कौन सी? दिव्य बुद्धि दाता। बुद्धि को दिव्य कैसे बनाओ, स्वच्छ बुद्धि कैसे बने? अपने आप तो नहीं बनेंगे, अपने आप बाबा बनाते सभी का बनाएगा, तो दिव्य बुद्धि कैसे बनाता है? तो ये मुख्य आठ शक्तियां। फिर बाबा ने बच्चों को खजाने दिए। कौन से खजाने दिए? अभी कल रविवार के मुरली में सुनाया कि बच्चे ये कौन, आप भाग मास्टर विधाता हो, है ना, वो भाग्य विधाता, तो वो विधि बताता है। कौन सी विधि? एक विधि मुख्य है ज्ञान। जो ज्ञान दिया, ये खजाना है ना, तो आप क्या करेंगे? अपने तक रखेंगे? थोड़े बच्चे ऐसे माँ बाप धन देते हैं बैंक में रख देते हैं डिपॉजिट, नहीं तो जमीन के गाड़ कर जमीन में गाड़ के रख देते हैं, है ना। एक बच्चे है दान करते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, वृद्धि करते हैं, एक क्या 100 गुना बनाते हैं। तो ज्ञान का खजाना जो बाबा ने दिया, तो आप कैसे देंगे औरों को? उसकी विधि चाहिए। सिर्फ सुनना सब कुछ नहीं आए, बहुत कुछ सुन लिया, आधा कल्प रामायण महाभारत गीता क्या नहीं सुना, बहुत कुछ सुना, सिर्फ सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं। लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। तो आचरण में लाना है, उसकी विधि चाहिए। तो वो आप सोच के बताना, तो ज्ञान के खजाने को आप कैसे सेवा में लगाएंगे? दूसरा, ज्ञान के बाद बाबा ने कहा रोज योग करते हो आप, तो योग के अंदर सर्वशक्तियों की प्राप्ति होती है। बाप बच्चों को क्या देता है? सर्व आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, सहज एक ही शब्द है, योग के लिए एक ही शब्द है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। जितने मुझे याद करेंगे, अनेक जन्मों के जो विकर्म है, विकर्म विनाश होंगे, है ना, एक साधारण शब्द है। तो उसको कैसे करना चाहिए? उसकी विधि चाहिए, अपने अपने होगा ये। तो ये आत्मा समझ करके बाबा को याद करे तो सर्व शक्तियों की प्राप्ति, वो प्राप्त शक्तियों का दान करो। कैसे करेंगे? तीसरा, बाबा ने कहा गुणों का दान करो। शक्ति आपके अंदर आई तो गुण आते हैं, तो कैसे? कोई बहुत गुस्सा करता है, नहीं मुझे चुप रहना है, सहन करना है। कहां चुप रहना है, कहां सहन करना है, कितना करना चाहिए? सदा बाबा ने कहा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहो। कहां मुस्कुराना चाहिए, कहां नहीं मुस्कुराना चाहिए? नहीं, बाबा ने कहा मुस्कुराते रहो, है ना, उसको भी समय परिस्थिति व्यक्ति। बाबा के श्रीमत भी यूज करने का, कहां कहां यूज करना चाहिए, समय अनुसार यूज करो। व्यक्ति कौन सा है, परिस्थिति कौन सी है, उसके अनुसार श्रीमत को यूज करने वाले चाहिए। फिर गुणों के बाद बाबा ने कहा कि दृष्टि, दृष्टि के अंदर रूहानी दृष्टि, किसको दृष्टि देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। किसी को दृष्टि दे दो, सामने वाला पत्थर नहीं है, उनके पास भी शक्ति है, तब कहते किसी की नजर लग गई, किसी की दृष्टि ऐसे आपको खींच लेंगी, तो वो दृष्टि देने की भी विधि चाहिए। कब देना चाहिए, कैसे देना, रूहानी दृष्टि कहते हैं हम। बहुत माताओं के पास सबके अंदर इच्छा होती है, भाई जी दृष्टि दे दो, दादी जी दृष्टि दे दो, है ना। फिर स्नेह कहा, स्नेह का खजाना दिया। कौन सा स्नेह? दो चीजें इसमें अंदर आते हैं, एक प्यार और एक स्नेह। प्यार जो शब्द है ना, ये भौतिक है, दैवी गुणों में आता है। स्नेह जो आया ये रूहानी है, आत्मा के प्रति स्नेह। न तो बहुत प्यार है, वो मोह में परिवर्तन होता है, अटैचमेंट में आता है, कर्म बंधन में डालता है। और रूहानी स्नेह है, ये बाबा के बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत सहयोग देते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो थोड़े दिन ठीक है, बाद में क्या होता, वो कर्म बंधनों में लाता है, कर्म संबंध। ऐसे नहीं स्नेह नहीं करना चाहिए, तो उसकी विधि चाहिए, कहां कैसे, किस विधि से, उसको बाबा मुरलियों में कहता है फैमिलियरिटी में आते हो, है ना। संसार में रहते हुए हम फैमिलियरिटी में आते हैं, परिवार है बाबा का, तो कर्म बंधन बनता है। तो स्नेह भी कहां, कैसा, किस विधि से, कहां तक देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसकी भी विधि है, ये भी खजाना है। बाबा ने स्नेह दिया बच्चों को, तब बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा न्यारा और प्यारा। स्नेह करने के बाद भी बहुत प्यारा नहीं, मैं मेरा नहीं होना चाहिए, न्यारा और प्यारापन होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, ये सुनने के लिए ठीक लगता है, आप आचरण में आओ तब पता चलता है कि कैसे कर्म बंधनों में मनुष्य फंस जाता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान के पॉइंट्स देता है बाबा, उसका मनन चिंतन करना चाहिए। सुन लिया, सुनने से कुछ नहीं होगा, मनन चिंतन करते हो, जैसे दूध के अंदर मक्खन है दिखाई देता है नहीं, दही उसको डाल के रखे, जमा के रखते हो, दूसरे दिन जब घुमाते हो तब मक्खन निकलता है। तो ऐसे ही ज्ञान के अंदर जो शक्ति है उसको कहा ज्ञान बल। तो वो चिंतन करना पड़ता है, अपने आप से बात करते रहो, कोई मिला समझाओ वो भी कुछ बताएगा, है ना। तो बढ़ता है ज्ञान दान करने से। फिर बाबा ने कहा रूहानी स्नेह हो गया, फिर सहयोग भी देना चाहिए, लेकिन सहयोग भी कहां तक देना चाहिए, देने के बाद क्या रखना चाहिए, निस्वार्थ सहयोग कहा। ना हम कुछ लेके आए थे ना हम कुछ लेके जाएंगे, लेके आए थे कुछ, मैं नहीं दे रहा हूं बाबा, ये आपकी चीज आपके बच्चों को दे रहा हूं, जिम्मेवार आपकी चीज मेरी नहीं, मैं यहां निमित्त हुआ, ट्रस्टी हुआ, ये मेरी चीज, मैंने कुछ नहीं लिया था, ये हाथ से कुछ, ये हाथ भी मेरे नहीं, तन बाबा ने दिया। आप एक घंटा ज्यादा रह सकते हो शरीर में बाबा, आज नहीं कल आता हूं, चलेगा, तो मेरा नहीं। तो सेवा के अंदर भी जहां सहयोग देना, धन का, तन का, मन का, वहां इच्छा होती है, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने दिया, तो जहां मैं आया वो सहयोग भी क्या हो जाएगा, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तब मनुष्य थकता है। नहीं तो सेवा से मनुष्य के अंदर उमंग उत्साह आता है, कोई ज्ञान में चलते चलते क्या हो जाता है, उमंग उत्साह नहीं, उसको कोई प्राप्ति नहीं हुई, अप्राप्ति है। ऐसे बच्चों को भी क्या देना चाहिए, लिफ्ट देना चाहिए, उसको कहा उमंग उत्साह बढ़ाओ, उसको उमंग उत्साह बनाओ, उसको साथ दे दो, उसका उमंग उत्साह बढ़ाओ, तो खड़ा हो जाए, अरे इतना दिन योग किया, ज्ञान सुना, अभी तक मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं, बाबा ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि बहुत जन्मों से मांगने की आदत बनी है, इच्छा चाहिए, अभी कुछ चाहिए। अभी बाबा ने क्या कहा, बच्चे आज बीज बोलो, आज ही फल नहीं मिलता है, 3-4 महीने के बाद उगेगा, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो ये 21 जन्मों के लिए मिलेगा, भविष्य में अभी नहीं। कहीं बच्चे स्कूल में पढ़ते पढ़ते दोनों काम करते, पढ़ते भी नौकरी भी करते, उनको अब भी कमाई चाहिए, तो पढ़ाई में ऊंच पद नहीं पा सकते है, क्योंकि इतना ध्यान दे नहीं सकते हैं। तब यहां बाबा ने कहा बच्चे संसार में अपना समय ज्यादा नहीं दे दो, सारा कल्प दिया आपने, ये अंतिम जन्म है, ज्यादा समय अविनाशी कमाई में समय दे दो, ध्यान दे दो, सारा कल्प का आधार है इस संगम युग है। अभी अगर अपने समय अपने बच्चों को संभालने में, घर संभालने में, खेती में, बिजनेस में, अपने शरीर को ही खिलाने में, संभालने में अगर समय लगाया तो तपस्या कब करेंगे, सेवा कब करेंगे, कमाई कब करेंगे, भाग्य कैसे बनेगा। हम चाहते हैं सारे कल्प के लिए चाहिए, बाबा तो गारंटी देता है 21 जन्मों के लिए मिलेगा मिनिमम, जैसे कंपनी वाले फैन की गारंटी देते हैं 5 साल चलेगा, लेकिन वो 50 साल तक भी चल सकता है, गारंटी 5 साल की। तो यहां भी बाबा 21 जन्मों की गारंटी देता है, तो आपको 21 जन्म बस उसके बाद नहीं चाहिए, बाबा को क्या कहेंगे, बाबा हमको कितना जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए बस, 22वें जन्म में बीमारी दुख आए तो चलेगा, सारा कल्प चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, बीज बोते समय देखना पड़ेगा ना। आज बाबा ने मुरली में कहा सब प्राप्तियों का यह स्मृति रहो, संगम युग की स्मृति है, ये कौन सा युग है, कौन सा समय है, संगम का है। ये अगर हमारे अंदर स्मृति है, हमारा समय वेस्ट नहीं करेंगे, प्राप्ति करेंगे। इस संगम युग पर जो करते हो उसका फल सारे कल्प मिलता है। समय की भी पहचान चाहिए। कभी भी खेती बोलो नहीं, बरसात आई, बरसात के समय पर खेती में बीज बोया जाता है। हम बिजी थे, बीमार थे, ये कारण किसको बताएंगे? तकदीर को। समय पर अगर आपने कर्म नहीं किया, बीज बोया नहीं खेती में, बरसात आई चली गई, आपके पास तो बहुत कारण है, घर में शादी थी, बीमार थे और कुछ था, तो ये किसको बताएंगे? फिर द्वापर के बाद मांगना क्यों पड़ रहा है? नहीं तो भाग्य विधाता आके बच्चों का सर्व खजानों से बच्चों को भरपूर करता है। एक नहीं, सात आठ खजाने, हर प्रकार के खजानों से भरपूर करता है, हर शक्तियों से भरपूर करता है, फिर भी बच्चे यथाशक्ति, क्यों कि उसका मनन चिंतन समझ में नहीं आ रहा है। पैसे कहां, मां बाप ने पैसे दिया तो वो कहां लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका भी ज्ञान चाहिए। सिर्फ ऐसे रखने से नहीं बढ़ता है। किस बैंक में इन्वेस्ट करने से कितना इंटरेस्ट मिलता है, कहां लगाने से बढ़ गया, इन सब का ज्ञान चाहिए। उसमें से एक ले लो पहले, कि ज्ञान का खजाना। अब देखो आप भी हम भी ज्ञान सुनते हैं, नोट करते हो। देखो कल सवेरे आप सबने मुरली सुनी, किसी ने किसी को भी मुरली के पॉइंट सुनाया नहीं? सुना, बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया, आपने नोट किया, अपने पास रखा, किसी ने दान किया? कल ही बाबा ने कहा कि दान करो। इसलिए बहन जी आज कह रही थी श्रावण सोमवार है, कौन सा सोमवार है ये? हाँ, तो क्या करते हैं? दान करते। तो आपने तो दान किया नहीं, श्रावण मास में आए हो तो कुछ दान ही नहीं किया, और वो भी आपका नहीं, भगवान ने दिया हुआ खजाना दान करो। तो क्यों नहीं कर रहे उसका भी हमको, हमारे जीवन में अभी क्या मुरली सुनते सुनते मुरली के अंदर डिसइंटरेस्ट हो गया है, उसका भी कारण है, दोष आपका नहीं। कारण क्या है? मुरली सुनी तो क्या करेंगे, मेरे पास है, मैंने लिख के रखा है, जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे। तब कहा कि ज्ञान का वैल्यू है हमारे पास, उसमें संतुष्टता नहीं। ये वृद्धि करना चाहते हो उसकी विधि है। अगर आज आपने मुरली सुनी, 50 साल तक आज की मुरली के पॉइंट आपको याद रहेंगे। तब बाबा ने कहा ज्ञान को अविनाशी संस्कार बनाओ, सारे कल्प में काम में आएगा। ये संस्कार अविनाशी खजाना है, क्योंकि देने वाला कौन? अविनाशी है। किसको देता है? शरीर के लिए नहीं, आत्मा, आत्मा अविनाशी। तो आपने किसको दिया? शरीर को नहीं दिया, आत्मा को दिया, है ना? अविनाशी फल अविनाशी है। लेकिन हम क्यों नहीं सुनाते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता। देख लो सवेरे मुरली सुनी, याद ही नहीं है, तो क्या करें? उसका कोई उपाय? हर कारण का निवारण है। बहन जी बताओ, अगर सवेरे मुरली सुनी, अगर आपको माता जी कहेंगे बहन जी मैंने भी मुरली सुनी थी, याद ही नहीं, क्या सुना बताओ, तो क्या कहेंगे आप? डायरी खोल के देखेंगे, डायरी भी साथ में नहीं, बता सकेंगे? याद नहीं रहती है? रहती है, याद रहेंगी? सवेरे मुरली सुनी सारा दिन में याद रहती है? पक्का नहीं रहती? क्यों? अगर किसी ने गुस्सा किया आपको तो सारा दिन याद रहेगा ना, 10 साल तो भी याद रहेगा ना, तो मुरली क्यों याद नहीं रहती है? तो ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, ये गलत ज्ञान है, ये अच्छा ज्ञान है, क्यों? उसका भी निवारण चाहिए, है ना? तो एक काम करो, आज के बाद आपके मुख से कभी आना नहीं चाहिए, भगवान हमको पढ़ाता है वो हम भूल गए, मनुष्य की और किसी की बात भूल जाओ चलेगा, लेकिन उसकी विधि है। जब भी मुरली सुनते हो ध्यान से आराम से सुनते बैठो, उस सारे मुरलियों से एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा, जो भी आपको अच्छा लगा, कोई एक शब्द, एक महावाक्य, वो नोट करके भाई लिख कर अपने जेब में रखो, माताएं अपने पास लिख कर रखो। इसमें कोई तकलीफ है? सिर्फ सुनने से आपको नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता है। हमारी बुद्धि इतनी किसी की भी सतो प्रधान बनी नहीं, तभी तो हम इधर आए हैं बाबा के पास। तब माताएं मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो नहीं कहते हो, पता है बुद्धि हमारी इतनी स्वच्छ नहीं है, सारा कलप चल के आए, इतनी तमो प्रधान भ्रष्ट हो गया है, तो उसको स्वच्छ कैसे बनाए? सहज तरीका है, एक ही शब्द ले लो मुरली से, जो आपको पसंद है। ये वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, यही लेना चाहिए, नहीं, जो आपको अच्छा लगा। आप समझते हो ये पॉइंट बहुत अच्छा, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। कि हर एक को अपनी बीमारी पता है। आज बाबा ने कहा, बच्चे अपनी चेकिंग करो, अपने ऊपर ध्यान दे दो, मेरी वृत्ति कहां जा रही है, मेरी वृत्ति कितनी शुद्ध है, अपना चेकिंग करो। हर एक अपने को जानता है, उस अनुसार ज्ञान ले लो। हर एक अपनी बीमारी जानता है, तो उसको सुधारने के लिए ये दवा है। तो एक शब्द सदा भी नहीं, 8-10 दिन करो, एक महीना भी नहीं, लेकिन लिख के रोज डालना चाहिए जरूर। शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को भी। दो चीज अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा को भी भूख लगती है, तब गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, जोश आता है, तो उसको भी शांत करने के लिए शक्ति चाहिए। तो ये एक मुरली के पॉइंट लिख के जेब में रखो, जब नाश्ता करने बैठते हो बाबा की याद में नाश्ता करो। क्या याद करेंगे? बाबा आपका ये क्या याद करें? हाँ, बाबा ने मुझे आज ये काम बताया था, ये मुझे आज करना चाहिए, है ना। माँ ने बच्चों को कहा, बच्चे मार्केट में से लेके आओ। मार्केट में गया, लेकिन मम्मी ने क्या कहा वो याद ही नहीं है। मम्मी की याद है, लेकिन उन्होंने क्या करो कहा वो याद नहीं है। बाबा की याद है, बाबा है, शिव बाबा है, उसने क्या कहा था काम, वो आज करना। उसको कहा सुपूत बच्चा है, ये मेरा कहना आज का आज मानता है। बाप भी ऐसे बच्चों पर सदा हाजिर रहता है, बच्चों की हर बात वो मानता है, है ना। इसलिए सुपूत बच्चा चाहिए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल फाउंडेशन चल चले, एकदम ऊपर उड़ने नहीं जाओ, पंक नहीं है कैसे उड़ेंगे। पहला ज्ञान, एक शब्द, दिन में खाना आते याद नहीं है, लिख के रखा हुआ है, निकालो पढ़ो आज बाबा ने क्या कहा। रात को खाना आते ही 2 हाथ दिया है सबको, खाना आते ही अरे मुरली याद नहीं, जेब में है, पढ़ो खाना खा लो 3 दफा सवेरे दिन में शाम को, और सारे दिन में 1, 2, 3, 4 जितने लोगों को सुना सकते हो मुख से वर्णन जरूर करो, दान जरूर करो, तब ऊंच पद पाएंगे, तब संस्कार बनता है। इनको देखते ही भाई जी ओम शांति। देखो आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, बाबा भी याद आया, सेवा भी किया, शुभ समाचार भी दिया, एक साथ सब कुछ हो सकता है। मिलो, ओम शांति करो, लेकिन कुछ दान दे दो। वो कौन दे सकता है? जिसके बुद्धि में धारणा है। धारणा कैसे होंगी? आपने सुना, लिखा, अपने आप को पढ़ाया, एक दफा नहीं, सवेरे से रात तक, कम से कम 3-4-5 दफा करो, आपके ऊपर है मिनिमम। और सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को सुनाना जरूरी है, तब संस्कार बनते, तब देखना आपके अंदर मुरली के लिए कितना इंटरेस्ट पैदा होता है। अरे आज नया पॉइंट लेना चाहिए, कल लिया था, तो सारे मुरली सुनते समय आप नया पॉइंट सुनते हो, ढूंढते हो आज नया क्या सुनाया, इनको नया पॉइंट देना चाहिए, नहीं तो ये बताएंगे कल आपने बताया था वही बता रहे हो, नया कुछ बताओ। तो मुरली पर अट्रैक्शन, ध्यान तब जाता है कि नई चीज चाहिए। और रोज मुरली में बाबा कोई ना कोई एक नया शब्द बोल देता है, कई कोने में होता है, रोज देखना, तब बाबा कहते एक दिन भी मुरली मिस नहीं करो। ये पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, सुनने से नवाब नहीं बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे फिर दान भी करेंगे। शिव बाबा ने इधर ऐड किया, वो दुनिया का महावाक्य है, यहां दान भी करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। और ये दवाई भी है, अगर आप में से कोई देख लो, जितने इधर बैठे हो, नए कोई नहीं, शिविर वाले तो कोई नहीं इधर, कम से कम 1 साल 2 साल 5 साल ज्ञान में चलते हो, है ना, तो आप देख लो जितने यहां बैठे हो बाबा के बच्चे, एक भी आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, ऐसे कोई पुण्य आत्मा है? देखो एक आत्मा, एक ही सत्य में जाए, पार्वती बहन भी जाएंगी ऊपर, अरे कैलाश पर्वत पर कौन रहता है? तो तो हाथ उठाओ जल्दी, देखो कौन कौन होंगे। एक ही बस, सत्युग में एक ही का टिकट बुकिंग करेंगे और किसी का नहीं। हाथ दो, अभी धीरे धीरे उतारे, दो तीन, नारायण एक है, लक्ष्मी तीन चार है, तो नारायण लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए ना। लक्ष्मी को अपने आप टिकट नहीं मिलेगा, नारायण चाहिए। सत्युग का फाउंडेशन है लक्ष्मी नारायण, दोनों चाहिए। तो उसकी दवाई चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुनने से क्रोध जाओ क्रोध जाओ, सौ दफा कहने से क्रोध जाएगा नहीं। सिर दर्द हो रहा है, दवाई लेने के बगैर जाएगा नहीं। कि शरीर की बीमारी के लिए स्थूल दवाई चाहिए, क्योंकि ये पांच तत्वों से बना हुआ है। तो इस संस्कार को मिटाना चाहते हो, इसकी दवाई है, हर एक की दवाई है। तो आप देखना, आप में से कोई करके बताओ, सिर्फ आठ दस दिन, एक महीना नहीं, आठ दस दिन मुरली के पॉइंट जेब में रखो, तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ और एक दो तीन किसी न किसी को सुनाओ, और एक हफ्ते एक महीने के बाद एक दस दिन के बाद मुझे बताएंगे, बताओ बरेली से कौन कौन क्रोध मुक्त हो गए। क्योंकि बाबा पूछेगा बहन जी को, बहन जी सत्युग में किसको ले जाए, क्रोध का अंश भी रहेगा, सत्य का टिकट मिलेगा, बाकी चार विकार छोड़ दो, क्रोध एक। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे हिम्मत रखो, मदद मैं करता हूं। हिम्मत क्यों, क्रोध करना न करना आपके हाथ में है। अगर माताजी पिताजी बहुत गुस्सा करता है, आप बोलेंगे कुछ, चुप रहेंगे, क्योंकि बड़े हैं, आपके पास सहन करने की शक्ति है। यहां करते हो तो यहां भी करो, छोटे कोई गुस्सा करते हैं गलत बोलते हैं वहां कर सकते हो, मुझे यहां भी करने की आपके पास शक्ति है, आप करते नहीं हो। जो शक्ति नहीं है वो करो असंभव है, जो आपके पास पहले से है, बड़ों के सामने आप कभी बोलते नहीं हो, सहन करने की शक्ति है, वो सब जगह यूज करो। हो सकता है कि नहीं, हर चीज का नहीं। अगर कोई तकलीफ है तो बताओ, बाबा ने ऐसे ज्ञान नहीं, बच्चे ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, नहीं, विधि समय हर चीज बताया। बच्चे ज्यादा नहीं, एक महीना भी नहीं कहा, आठ दस दिन मुरली के पॉइंट नोट करो। तीन कंडीशन है, जैसे डॉक्टर सिर दर्द की दवाई देता है सवेरे ये लेना है, आप कहेंगे सवेरे भूल गए, शाम को दोनों गोली लेते एक साथ, जल्दी ठीक हो जाएगा, हो जाएगा और बीमार हो जाएंगे। हर चीज की विधि है, तो यहां भी विधि है। एक मुरली के पॉइंट ले लो तीन दफा मिनिमम, और एक दो तीन जितना ज्यादा सुनाते हो उतना जल्दी, कम से कम जो चार लोगों को मुख से वर्णन करना चाहिए। अगर याद नहीं जेब से निकाल के पढ़ के बताओ। माताएं घर में फोन के साथ मुरली के पॉइंट रखो, फोन किसी ने, बच्चों ने, पति ने, और किसी ने फोन किया, बात करो, संसार के बात करो, नहीं करो से नहीं, सुनने के बाद, बात करने के बाद फिर बता, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो शुभ समाचार भी दे दो। इसमें कोई तकलीफ है, किसी को तकलीफ है तो बताओ। तो खजानों को कैसे यूज करना चाहिए, देने वाला दे रहा है लेकिन बांट लो अपने आप, नहीं आपको नहीं, मुझे भी अगर आप कहो ये, अगर ये मैं नहीं करूं, मुझे भी कभी पूछ लो आप, भाई जी आज क्या कहा, देखता हूं याद ही नहीं आएगा। कि हमारी बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई, किसी का दोष नहीं है, सारे कलप चल के आए, मैले कपड़े हो गए। तब बाबा ने कहा मैं धोबी बन के आया हूं बच्चों की बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए। हो सकता है। दूसरा बाबा ने कहा विधि पूर्वक याद, योग और तपस्या, तीन चीजें हैं। हाँ चलते फिरते किसी को देखते याद आ गया, अरे इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, इनके प्रति शुभ संकल्प करना चाहिए, और तपस्या अलग, अमृत वेले और शाम को। निराकार स्थिति में बाबा ने आज का शून्य, विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी, अव्यक्त स्थिति, तो आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए, तो माताजी को याद है मैं मना माता हूं, नहीं, योग में जब बैठे हो सवेरे शाम को, बैठते शरीर नहीं, मैं आत्मा, आत्मा को जागृत करो, मैं कौन। क्योंकि हर एक जानता है मैं पुण्य आत्माओं, पाप आत्माओं, देव आत्माओं, महात्माओं, आप जानते हो, पूछ लो। मैं कहूंगा माताजी तो पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, आप पूछ लो, क्योंकि आपका दिल वो सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो आपको सत्य बताएगा। आप पूछ लो मैं कौन, नहीं मैं इतना पुण्य आत्मा नहीं हूं, इतना पवित्र नहीं हूं जितना बाप चाहता है, अभी ये कमियां है, तो अपने आप से पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, उसमें भी नंबरवार प्रजा भी है, दास दासी भी है, सेवा करने वाले भी है, तो पूछ लो अपने आप को। तो बुद्धि सत्य बताती है मैं कौन सी आत्मा, फिर मेरा रूप कैसा है। बाबा कहते हैं सफेद चमकता नादि स्वरूप आपका, सफेद चमकता वा सितारा, बेदाग नहीं, अभी बहुत दाग है, वो रियलाइज करना है, महसूस होगा तब कहेंगे मुझे ये बीमारी है, इसको मिटाना है, ये डॉक्टर की दवाई लेना है। क्योंकि अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, जब तक आपने महसूस नहीं किया, तो आज बाबा से कौन सी शक्ति, आज कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शुगर की बीमारी भी है और ब्लड प्रेशर भी है, ये भी है वो भी है, आज ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आंखों के डॉक्टर के पास आज जाना चाहिए, कल ब्लड प्रेशर वालों के पास जाएंगे, आज बाबा से मुझे ये शक्ति लेनी है। क्यों? बाबा ने कहा मैं पवित्रता का सागर हूं, पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। तो अपने आप को जागृत करो पहले और शुभ बाबा से बात करो, बाबा आप कहते हो मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, आप पवित्रता के सागर हो, बाबा ये मेरा कैसे जाएगा दाग, मैं क्या करूं, उसी के ऊपर बात करो। बाबा आप किसमें पवित्र हो, आपको शरीर तो है ही नहीं, किसमें पवित्र हो आप? हाँ आत्मा की, यहां शरीर की बात ही नहीं है, आत्मा, आत्मा के अंदर मन, आपके मन में देहधारियों का विचार नहीं, कोई भी आता नहीं। बाबा मैं भी कभी सारा दिन में कम से कम योग में बैठे हुए देहधारी का विचार नहीं करूंगा, बाबा से ही पवित्रता की शक्ति के ऊपर विचार करूंगा, बाबा मैं कैसे पवित्र हो, मन में कोई विचार नहीं है, इसके लिए क्या करो? बुद्धि स्वच्छ रहे, बुद्धि के अंदर किसी की चित्र किसी की याद नहीं आना चाहिए, तो क्या करो? बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, बाप हूं, सिखाने आया हूं, मदद करने आया हूं, सिर्फ बता के चला ज्ञान सुना के नहीं जा रहा हूं, मदद भी करता हूं। तो बाबा से हर प्रकार से, बाबा देखो आपके संस्कार और मेरे संस्कार, आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे साथ जाएंगे, नहीं तो बारात के रूप में आना पड़ेगा, बारात के रूप में जाना अच्छा है ना, पीछे पीछे जाओ चलेगा? हाँ हाँ, बाप के साथ जाना चाहते हो तो बाबा ने कहा बाप समान बनो, कंपेयर करो, देख लो, मांगना नहीं, अपने आप को कंपेयर करो, बाप कितना परसेंट प्योर है और मैं कितना हूं, आज एक है कल दो है, धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाओ, अपने आप को कंपेयर करो। देखो ब्रह्मा बाबा भी कर्मातीत बना, आप जानते होंगे कहानी, जानते हो पंजाब से छोटी सी एक बहन आई थी, कृष्णी दादी करके अंबाला कैंट में है, उनके साथ छोटी थी, हिमालय में जम्मू में नाव चलाती थी, पढ़ी लिखी हुई भी नहीं, आज भी जीवित है कैलाश बहन करके गांधीनगर में गुजरात में, छोटी सी बच्ची। तो उनको जब बाबा था, बहने सभी जा रहे थे, पार्टी आई, बाबा ने कहा ये बच्ची कहां से आई, हाँ बाबा से मिलना फिर, ऐसे कहा। तो फिर टीचर ने कहा नहीं अकेले नहीं जाना, हम सब जाके स्नान करके फिर बाबा से मिलने जाएंगे, बाबा ने बुलाया अभी नहीं, हम सब जाएंगे। गई, स्नान भी किया, हो गया, बाबा 10 बजे के बाद झोपड़ी में बैठता था तपस्या करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि एक पंजाब से लड़की छोटी बच्ची आई उसको बुलाओ, तो किसी को भेजा, आई बच्ची जाओ, गई वतन में। बाबा क्या देखा? बाबा उधर एक आपके जैसे बाबा था, वो बहुत अच्छा था, शक्तिशाली था, ठीक है बच्ची जाओ। फिर 15 दिन के बाद उसको बहुत बुखार है, कि बरसात का समय था, बुखार है, सो गई थी। बाबा ने किसको कहा, वो जो छोटी बच्ची है उसको बुलाओ, बाबा उसको बहुत बुखार आया, सो गई हो, को अर्जा नहीं, बुलाओ, बाबा ने बुलाया, बोलो आई बच्ची जाओ। गई और कहा बाबा आज वो बाबा और आप दोनों एक जैसे थे, मैं देख रही थी इनके आप ही ऊपर है। तो बाबा ने कहा जाओ। 2-4 दिन के बाद बाबा अव्यक्त हुए। तो बाबा कंपेयर करता था अपने आप को, वो संपूर्ण ब्रह्मा और ये ब्रह्मा में क्या अंतर है। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार कराया, बताया बच्चे ऐसे बनाना है, हमको लक्ष्य दिया, तुमको लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, लक्ष्य दिया। तो ब्रह्मा बाबा को भी लक्ष्य देता, तुमको संपूर्ण ब्रह्मा बनना है। तो कंपेयर करता मेरे में और उस ब्रह्मा में क्या शक्ति कमी है, किसकी कमी है। 15 दिन। तो आज हमें भी रोज सिर्फ बाबा बाबा करते रहना चाहिए, तो भक्ति हो गया, भावना हो गया। बाबा ने कहा मेरे जैसे बनो, आज का हीरो पार्टधारी बनो, हीरा बनना चाहिए। कैसे बनेगा? एक एक शक्ति ले लो। तब पहले आपको सर्वशक्तियां बताया, बाबा की सर्वशक्तियां कौन सी, सर्वशक्तिवान कैसा है वो? एक शक्ति बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मैं आपके जैसे कितना परसेंटेज बन सकता हूं, कैसे बनूं, क्या करूं? अब आप आएगा क्या, बाबा मुझे बोलेगा बताएगा? अब इसकी भी उदाहरण बताता हूं। देखो राम जब वनवास गया, श्री राम जब जाते समय साधु सन्यासी जो तपस्या कर रहे थे उन्होंने श्री राम को कहा, श्री राम ये अस्त्र ले लो, ये वरदान ले लो, आपके जीवन में आगे जाके बहुत समस्याएं आएंगी, ये अस्त्र आपको काम में आएगा। अपने आप एक एक साधु जहां जहां मिला ये सारे अस्त्र वरदान, एक ऐसे समय एक बार आ गया, लक्ष्मण भी गया, सीता भी गई, राम अकेला हो जाता है। तब रावण के सैन्य उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, सब अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तब क्या करो, तुरंत आकाशवाणी होती है, राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो। वो अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। हमारे सामने हमारी कहानी है, आप सबकी कहानी है, ये रामायण बना ऐसा नहीं बना, ये आपकी कहानी है। जो रोज एक एक बाबा मुरली अस्त्र है, ये एक एक मुरली के पॉइंट रोज चिंतन मनन करके अपने अंदर जमा करो। बाबा को पता है बच्चे आपका सारे कलप का हिसाब किताब चुकतू करना है, हर कदम में समस्या परिस्थिति आएंगी, तो इस परिस्थिति से इस समस्या से समेटना चाहते हो तो इस समस्या से आप अपने को विजयी बनना चाहते हो, अस्त्र चाहिए। तो बाप बच्चों को रोज एक एक अस्त्र देता है, एक एक मुरली के पॉइंट चिंतन करके जमा करो। जैसे संसार में चलते हुए ऐसी एक परिस्थिति आती है, अरे अब क्या करूं, तुरंत आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बाबा बोलेगा ऊपर से नहीं, आपके अंदर रिकॉर्डिंग है मुरली का। बाबा कौन, शक्ति है, तो वो करंट देता है, शक्ति देता है, अंदर जो भरा हुआ वो निकलता है, अरे ये काम करना चाहिए, अस्त्र जमा करो। अगर बाबा बोलता नहीं है, शक्ति देता है, टचिंग कहते हैं उसको, टचिंग में अर्थ क्या है, करंट देता है। सीडी के अंदर सारे गीत भरे हैं, करंट दे दो सारा निकलेगा, अगर करंट नहीं है तो सीडी बजेंगी? आपके अंदर सारा जमा आपको करना है, रोज एक एक के अस्त्र, एक एक मुरली के बट दस नहीं, एक 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 जमा करो, चिंतन करो, वर्णन करो, जमा करो। संसार में चलते समय एक कुरुक्षेत्र है, ये समस्या है सब जगह पर, हर कदम में, क्योंकि बहुत जन्मों के मेरे हिसाब किताब है, किस समय कौन किस रूप में खड़ा होगा पता नहीं चलेगा। तब बाबा ने कहा आपका नजदीक वाला व्यक्ति भी कब आपको लूट के चला जाएगा। आपने सुना होगा दयानंद सरस्वती आर्य समाज का गुरु था, उनका खाना बनाने वाला जो नजदीक वाला कम से कम उसी ने ही दूध में क्या डाल के दिया, बाहर से नहीं आया कोई, कोई दुश्मन बाहर नहीं अंदर ही है। तो अपने को सशक्त बनाना है, तो एक एक ज्ञान के पॉइंट जमा करो। समय आता है, परिस्थिति आती है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कोई नहीं होगा, तो तुरंत आकाशवाणी, अब बाबा टचिंग देता है, मेरे बच्चे है, तो हाँ ये अस्त्र यूज करना चाहिए, तो वो मुरली के पॉइंट याद आएगा, ऐसे करना चाहिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अगर आपके अंदर जमा नहीं किया है, बाबा शक्ति देता है, मुरली के पॉइंट याद आएगा, क्या करना चाहिए, अस्त्र आएगा नहीं, बाबा टचिंग देता है। आप कहेंगे बाबा ने कुछ नहीं किया, मदद नहीं किया, बाबा सुनता नहीं, बच्चे तुमने जमा ही नहीं किया, अस्त्र दिए थे, बिना अस्त्र के युद्ध के मैदान में जाओ, डायरेक्शन मिले ऐसा करो, तो आपके पास अस्त्र ही नहीं है तो क्या काम करेंगे। तो अस्त्र जमा करो अगर विजयी बनना चाहते हो। और बाबा रोज एक एक अस्त्र, एक ही ले लो, दो चार नहीं लेना, कभी कभी लोभ होता है बहुत ले लो, क्योंकि वो धारण करना भी चाहिए ना, इतनी हमारी शक्ति नहीं है, इसलिए कहते हैं ईट लेस, थोड़ा खा लो, डाइजेस्ट करो। बहुत खाया डाइजेस्ट हजम नहीं होगा तो बीमारी होंगी। देने वाला बहुत देता है, मुरली में देखो कितने पॉइंट्स है, अभी देखो कितने खजाने हैं, वो सब हम तय नहीं कर सकते, एक एक बूंद ले लो। मंजूर, कोई तकलीफ है, समझ में आया? तो ज्ञान दान कैसे करना चाहिए, शक्तियों का। अब रास्ते पर चलते हुए योग में, अभी आपने देखो कोई भाई ने कुछ आवाज किया, आपने इन्होंने कहा किसने कहा उसको बाहर रख दो, अब उसका कल्याण कौन करेगा, उद्धार कौन करेगा बताओ? अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास होपलेस सड़ा गला हुआ व्यक्ति है, डॉक्टर कहेगा मैं हाथ नहीं लगाता हूं, ले जाओ इसको, उसका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा। तो ये रूहानी हॉस्पिटल है, यहां कौन आएगा? आत्मा जो मरीज है, बीमार है, काम क्रोध लोभ बीमारी से, ऐसे व्यक्ति आएगा ना। तब बाबा ने कहा शक्तियों का दान दे दो। देखो हम एक जगह था सेंटर, बहुत चीज है इसमें, एक बताता हूं। एक जगह पर कुमारों की भट्टी थी, 200 कुमार थे, तो एक कुमार बीच में क्लास में उठ करके इतना जोर से चिल्लाने लगा, थड़पड़ाने, सब लोग उसको देखने लगे। हो गया, हम भी बैठा था, तो हमने कहा सबने देखा क्या किया, कुछ किया कुछ दिया? कुछ नहीं, आपके पास भगवान के बच्चे हो आप, क्या कर सकते हो? तो हमने कहा 10 मिनट अभी उस आत्मा को शक्ति का दान दे दो। तो भगवान के बच्चे क्या करते हो फिर, स्नेह कैसे देंगे, कैसे सहयोग करेंगे? शिव बाबा उस आत्मा को शांति की शक्ति, 10 मिनट योग किया, 3 दिन बिल्कुल देखता था मैं उसका, हंसता हुआ 3 दिन शांत। आपने देखा मधुवन शांतिवन में भी बाबा के समय पर भी कोई आत्माएं चिल्लाती जोर से, बाबा क्या करता है? साइलेंस। तो शक्ति का दान दे दो, उसका भी उद्धार करना है ना। तो ये रूहानी हॉस्पिटल है ना, तो क्या देंगे? तो आज बाबा ने कहा उसके अंदर योग के द्वारा जो आपने शक्ति का अनुभव किया, बाबा शांति का सागर है, तो चिंतन करो, सिर्फ अपने आप नहीं आएगा, किरणें अपने आप नहीं आता है। सूर्य बाहर आया है, आप इधर बैठे हो तो सूर्य की किरणें आपको मिलती है? आपको सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है? सूर्य तो आया बाहर, लेकिन आप अंदर बैठे हो। अगर आपको चाहिए शरीर को बाहर ले जाओ, तो यहां शुभ बाबा की किरणें आत्मा को मिलती है, आत्मा शरीर के अंदर है, उसको जागृत करो और बाबा से बात करो, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप शांति के सागर हो, मैं आपके जैसे क्रोध मुक्त शांत शीतल कैसे बनूं, उसके लिए क्या क्या करूं? चिंतन करो 5 मिनट 10 मिनट एक एक शक्ति के ऊपर। तो जब तक मैं आपको देखते रहता हूं, आप भी शक्तिशाली ना, आपके वाइब्रेशंस मेरे ऊपर पड़ते हैं, आपका प्रभाव मेरे पर पड़ता है, संघ का रंग लगता है, उसके साथ जुड़े रहना है। तो कैसे जुड़ेंगे? तो बात करते रहेंगे तो जुड़ेंगे ना। तो कैसे? दुनिया की बातें नहीं करना, शक्ति। और बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, बाबा मेरा ये करो, बच्चे वो तो डॉक्टर करेगा, मेरा काम नहीं, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, यही है ना। तो एक एक शक्ति लेके बात करते, बाबा से 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जुड़े हुए हो, उसको कहा बीज रूप स्थिति, बीज के साथ योग अग्नि कहा, ज्वाला रूप कहा, अग्नि है। तो एक एक शक्ति आपको याद आती, तो वो संसार में चलते हुए कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, कोई बेहोश हो गया है, कोई और कुछ कर रहा है, किसी को देखते बाबा, तब बाबा ने कहा आप हॉस्पिटल में जाते हो, क्यों जाते हो? आप दवाई देते हो उसको? नहीं। क्यों जाते हो देखने के लिए? आपको दे, आप जा करके देखते हो, बाबा इस बच्चे को बहुत तड़प रहा है, बहुत दुखी है, इसको मुक्ति दे दो, इसको सुख, इसको शरीर से मुक्त करो, इसकी बीमारी ठीक करो। तो आप दुआएं देंगे ना, कहां से देंगे आप? बाबा को बताते हो, आपके पास तो नहीं आए, है ना। तो ऐसे रास्ते पर चलते, संसार में चलते, रास्ते पर गरीब है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तड़प रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो कोई लड़ाई झगड़ा करता है, आप क्या कर सकते हो? तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, किसको? मास्टर कौन हो? मास्टर विधाता हो, विधि आप जानते हो, ये विधि पूर्वक भरो। और ऐसी कोई परिस्थिति आई तो बाबा उस बच्चे को मुक्ति दे दो, उसकी इच्छा है। किसी को अगर इधर बैठे हो बहुत प्यास लगी, भाई जी मुझे पानी पिलाओ, आप चुप बैठेंगे? अरे चुप बैठो ऐसा कहेंगे? बेचारे को प्यास लगी है, कुछ है, कैसे लाके देंगे ना कि नहीं देंगे? सहयोग करना है ना, जहां जरूरत है। तो यहां भी आपने देखा कुछ किया नहीं, इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे शक्तियों का दान दे दो। मन में सबको संकल्प आना चाहिए। अगर एक उदाहरण बता दूं, देखो सेंटर में आप बाबा के बच्चे हो, बाबा के बच्चों में गरीब है सब, एक भाई या बहन, कोई माता है गरीब है, और उनको कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए ले आओ तो आप जीवित हो सकते हो, कुछ कर सकते हैं, और उनके पास एक पैसे भी नहीं। तो सबको पता चल गया सेंटर में, तो क्या करेंगे आप? चुपचाप रहेंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे सर? आपके पास तो 2 लाख रुपए नहीं, है ना, सारे सेंटर को बताएंगे ना, पहले सभी जो जो एक पैसा देगा, कोई एक रुपया लेगा, कोई दस रुपया देगा, सबका हम सहयोग से एक का जीवन बचा सकते ना। अगर एक भाई को बहुत गुस्सा आता है, ये बहुत सेंटर में आके परेशान करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, उसको निकाल देना चाहिए, उसको कहें कल से सेंटर में नहीं आओ। क्या करना चाहिए बताओ? क्या दान देने? आपके पास तो कुछ नहीं, तो कब देंगे आप? कब देंगे? तो अकेले देंगे? आपने एक रुपया, एक लाख रुपए दिया तो थोड़ी होगा, उसको दस लाख रुपए चाहिए, आपके पास तो शक्ति नहीं। सारे मिलके कैसे करेंगे? उसकी विधि बताओ, क्योंकि ये रूहानी हॉस्पिटल है, आत्माओं की, ऐसी आत्माओं की ट्रीटमेंट इधर होता है ना, तब विधि चाहिए। इसलिए मुरली क्लास के बाद अगर किसी को पता चला, दीदी को बताओ, दीदी योग के बाद दो मिनट, नाम नहीं बताना कौन, विधि बाबा को बताओ, एक बाबा का बच्चा बीमार है, शारीरिक नहीं मानसिक, उसको शक्ति देना चाहिए। दीदी बताएंगी योग के बाद दो मिनट, जैसे देखो किसी ने शरीर छोड़ा, तब हम क्या करते हैं, शांति का दान दे दो मरने के बाद, तो जीवित होते हुए भी कुछ करना है ना, तो सब मिलकर के बाबा आपके एक बच्चे बहुत बीमार है, उसको शांति की शक्ति दे दो, उसको पवित्रता की शक्ति। व्यक्ति चित्र जरूरत नहीं है, आपके संकल्प, क्योंकि बाबा एक का काम, एक का नहीं सुनता है, संगठित रूप में सबका सुनता है, कि सबका बाप है, सबका आवाज तुरंत काम करता है, तो संगठित रूप में चाहिए, इसका भी प्रबंध रखना चाहिए सेंटर में। कभी कुछ होता है, सभी देवताएं तो इधर नहीं आएंगे ना, कोई कैसा है, कोई कैसा है, डॉक्टर के पास कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई कैसा बीमार आएगा ना, तो वो नहीं कहता है। तो यहां भी ये रूहानी हॉस्पिटल है, और हम रूहानी सर्जन के बच्चे हो, तो इसलिए एक ही मिनट बस, सब ऐसे आत्माओं को पता चल गया, उसको रूहानी, तब बाबा ने कहा योग के द्वारा जो शक्ति प्राप्त किया, शक्ति का प्रदान करो। कर सकते हैं? करना चाहिए, हो सकता है। कब करे, कैसे करे? मुरली के बाद पता चल गया भाई ये बहुत ठीक नहीं है, ये चाय पीता है बाहर का, ये बहुत डिस्टर्बेंस करता है, ये गुस्सा करता है, शराब पीता, हाँ सुना कहा नहीं, ऐसा नहीं, तभी तो आया हॉस्पिटल में। तो आप दीदी को, दीदी एक भाई को आज सबको बता दो, आप मुरली क्लास के बाद एक सेकंड, एक मिनट सिर्फ, एक बच्चे को, जैसे किसी ने शरीर छोड़ा, हम कहते आज शांति का दान दे दो, सभी बाबा को याद करो, है ना। तो ये जीवित होते ये भी जरूरी है, ये सेवा है, रूहानी सेवा है। तब बाबा ने कहा शक्ति का दान कैसे देना, समझ में आया? रास्ते पर चलते हुए कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई कुछ बोलते गलत, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति, ये बहुत अशांत है, ये बहुत डिस्टर्बेंस करता है ना, व्यक्तिगत भी संगठित रूप में भी। कर सकते हैं? करना चाहिए, मंजूर। फिर शक्तियों के बाद बाबा ने कहा रूहानी दृष्टि, स्नेह। कभी दृष्टि भी देनी पड़ती है, कभी कभी देखते हो, अगर वो स्मृति चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा परखने की शक्ति। अभी देखो माताजी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये कौन है कैसे पता चला, कैसे पता चलेगा अच्छी है खराब है, कैसे पता चलेगा? अभी सीता को ये नहीं पता चला कि ये रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा भाई कौन है? बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छी नजदीक संबंध में आके बात करता है, कैसे परखे? सीता कोई साधारण नारी तो नहीं थी ना, उनको पता नहीं चला ये रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा? हम किसी के संबंध संपर्क में आते, कभी पैसे देते हो, कभी सहयोग देते हो, कभी स्नेह करते हो, बहुत कुछ सहयोग देना पड़ता है, परिवार है, तो कैसे पता चले ये योग्य है ये अयोग्य है, कैसे परखे बताओ? परखने की शक्ति बताओ, किसी के पास नहीं? हाँ, अब एक महीना आपके पास व्यवहार देखो, तभी अभी तुरंत कोई आपके पास आया, अगर आपके पास एक भाई आया, बाबा का बच्चा ही आया, भाई जी आपके पास थोड़ा पैसे भी है, बहुत अच्छे हो, दान भी करते हो, देखा उसने, भाई बाबूजी मेरे बच्चे बीमार है, स्कूल में बच्चों को दाखिल लेना है, तो मुझे 1000 रुपया चाहिए, आप कहेंगे बाबा का बच्चा दे देता, और वो कल परसों एक महीना दो महीना एक साल का देता ही नहीं, तो आपका मन शांत रहेगा? मन में शुभ विचार आएंगे? आप बताओ, बाबा का बच्चा दूसरे छोड़ दो तो क्या करना चाहिए? क्या करना, देना नहीं चाहिए, मदद नहीं करना चाहिए, सहयोग नहीं देना चाहिए? तो क्या तरीका बताओ, कुछ तरीका चाहिए ना। अभी हम इधर ब्राह्मण बैठे हैं ना, बाकी तो नहीं, दुनिया के बाद छोड़ दो, यहां कैसे परखे? नजर से, नजर से देखो माताजी तो अच्छी दिखाई देती है, कैसे पता चले अंदर क्या चल रहा है? सीता कोई साधारण नारी थी, सीता ने देखा नहीं ये कौन था, उसको पता नहीं चला ये रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, परखने की शक्ति भी है, असाधारण, आज हमको वो जरूरी है। बाबा की शक्तियों को कैसे यूज करना है, सिंपल तरीका है, आज ही कर सकते हो आप। कभी किसी से मिलो, बाबा ने विधि बताया दृष्टि देने की, खाना लेते हो तो भी दृष्टि जलो, किसी से मिलते हो, कल बताया था डायमंड को देखो, है ना, डायमंड को कैसे देखेंगे आप? तो अगर आपकी दृष्टि से उनकी बुराई भी निकल जाएंगी, दाग भी मिटेगा, ऐसी शक्ति चाहिए, कैसे आएंगी? तभी व्यवस्था है उसकी, ऐसे अपने अपने उगाए। कभी किसी से मिलते हो, कोई भी हो, बिजनेस में, परिवार में, बाबा के बच्चों में, कोई भी, देखते ही बाबा ने कहा पहले स्मृति चाहिए, स्मृति से दृष्टि, स्मृति मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, ये समझकर अगर किसी को दृष्टि एक सेकंड देते हो, अगर वो दृष्टि हिलाता नहीं है तब समझना दिल साफ है, अच्छी तरह से बात करो, अच्छी तरह से मदद करो। अगर ये स्मृति रखे एक सेकंड देखते हो, देखते ही दृष्टि नीचे हिलती है, तब कहा संभाल के दिल में दाल में काला है, दिल साफ नहीं, क्यों दृष्टि हिलाई, कि बुद्धि स्थिर नहीं है। लेकिन एक मिनट तक नहीं, एक सेकंड बात करते करते आपको स्मृति चाहिए कि मैं कौन, श्रेष्ठ स्मृति से दृष्टि दे दो। देखते अगर आंखें हिलती नहीं है, स्थिर है, दृष्टि से दृष्टि मिलती है, तब समझना दिल साफ है। मदद करो, सहयोग दे दो, परखने की। आज कलयुग की दुनिया में घर में सब्जी बेचने के लिए कोई आता है, कोई कुछ काम करने के लिए आता है, कोई कैसे आता है, तो कैसे परखे व्यक्ति को? बाबा ने अस्त्र दिया है, उसका उपयोग करना जानना चाहिए बहुत सहज रूप से। आज ऐसे नहीं योगी बनो आप, इतना साल के बाद दृष्टि शक्ति चाहिए, नहीं, आज कर सकते हो। हो सकता है कि परखने की शक्ति कैसी है, कैसी शक्तियां यूज करनी चाहिए। ऐसा अगर जिसके अंदर कुछ खोट खोट है, अंदर कालापन है, अंदर एक बाहर एक, कहते हम इनका ये अंदर एक है बाहर एक है, हाँ वो है, आप कौन हो? वो तो खराब है, उनके अंदर अंदर एक है बाहर एक है, आप परख करके कर्म संबंध में आओ, क्योंकि परखने की शक्ति आपको दिया है। अगर आप चाहते हो ना, तो आप भी कर्म बंधन में फंस जाएंगे। अगर कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते हो तो अपने आप को परखना चाहिए, कर्म संबंध में औरों के संबंध संपर्क में आना है, सन्यासी नहीं हम, बहुत लोगों के संबंध में आना पड़ता है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, स्नेह से, स्नेह भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, नहीं तो कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं। तो रूहानी दृष्टि किसको पता चल गया, दृष्टि देने की विधि पता चला। कभी किसी से, कभी सेंटर में बहने अकेली है, कोर्स करने कोई आता है, तो उसकी दृष्टि उसकी विचार क्या है पता नहीं चलता है, लेकिन आपके पास वो शक्ति चाहिए। एक सेकंड देखना, ज्ञान से देख, बहुत ध्यान से सुनता कि देखते हुए इधर उधर ऐसे इधर देखता है ना। अगर बुद्धि स्थिर है तो ये कुछ ज्ञान सुनने के लिए आया है। बिजनेस में भी किसी को कुछ देना पड़ता है, देते समय इसको देवे या न देवे पहले दुविधा आता है कि ये कल देगा कि नहीं देगा, इसको मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दुविधा पहले शुरू होती है। तो स्थिर बुद्धि नहीं है, पहले संशय आया, तो स्थिर बुद्धि देखकर बाबा यह आपका बच्चा है, और अपनी स्मृति चाहे, श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होकर दृष्टि दे दो एक सेकंड के लिए, पता चलता दृष्टि से दृष्टि मिला रहा है, दिल साफ है। तो परखने की शक्ति कैसे यूज करना चाहिए, ज्ञान कैसे यूज करना चाहिए, किसी के संबंध संपर्क में आते हो कैसे आना चाहिए, नहीं तो बहुत हम संबंध संपर्क में आते हुए अटैचमेंट में आते हैं, कर्म बंधन में आते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, देना चाहिए भी, लेकिन कब देना चाहिए, कहां देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उसकी भी विधि चाहिए। नहीं तो आज ब्राह्मण बच्चों में पैसे की लेन देन करते हो बहुत, फिर हिसाब किताब बन जाता है, फिर दुश्मन बन जाते हो, कोर्ट में जाते हो, गलत विचार चलते हैं, ये बहुत होता है। मदद करना चाहते हो, करना भी चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन उसकी विधि चाहिए, मर्यादा चाहिए, समझ चाहिए। नहीं तो बाबा के बच्चे होके ऐसे करते हैं, ऐसे भी होता है बाबा के बच्चे होकर के भी, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं है, सभी के अलग अलग चीज है। कोई ऐसे आया, देखो राजा भी होगा ना, प्रजा भी होंगे ना, दास दासी भी होंगे ना, एक गुलदस्ता है, सभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो हमारे अंदर परखने की शक्ति चाहिए और उदाहरण चाहिए परखने की। समझ में आया कि कर्म बंधन, तो कर्म बंधन में आते हैं हम, कर्म संबंध। देखो आपको एक उदाहरण बताता हूं, लास्ट और भी है, प्रैक्टिकल चाहिए क्योंकि ये जरूरी है आज की दुनिया में। देखो एक माँ बाप दो भाई थे, हम 40-50 साल से जानता हूं उस परिवार को, हर साल आके माँ बाप बच्चे मिलते थे, और बेटा डॉक्टर है और सेंटर में समर्पित जैसे हर प्रकार की सेवा करता है, और हर साल आके मिलता था। अब भी 5 साल हो गया, मिला ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने। मैंने कहा कहां चला गया होगा, पता ही नहीं। एक दिन मैं गाड़ी से इधर से नीचे जा रहा था, तो एक रंगीन कपड़ा पहना हुआ बारीक सा लड़का एक रस्ते पर खड़ा है, तो मैंने गाड़ी रोकी। हमने कहा आप ही वो डॉक्टर है? भाई जी सॉरी, मैं आके मिलता हूं। हमने कहा सॉरी नहीं, मैं से पूछ रहा, आप ही वो है? कहता हां मैं हूं, सॉरी मैं आके मिलता हूं। आया, उसने क्या किया, नीचे शांतिवन में जमीन लिया, पैसे है, डॉक्टर है, कुमार है, दो भाई है, तो जमीन लिया। जमीन लेको किसको देगा, बाबा के बच्चों को देगा ना, बहुत बाबा के बच्चों को दिया। उसमें से एक बेटा एक अच्छा था, वकील था, तो सबको उसने 100 रुपए में जमीन लिया और सबको 200-200 रुपए में दिया, सबने पैसा दिया। ये वकील था थोड़ा समझदार, इसने उसको 100 रुपया दिया, और 100 रुपया दिया नहीं, कहता कल देता हूं। वो बॉम्बे से आता है, आज नहीं कल देता हूं, फिर जाता है। ऐसे करके वे 3-4 साल लगाया, कोर्ट में गया, सब कुछ किया, इतना बारीक सफेद कपड़ा पहनता था, रंगीन कपड़े पर आया और इतना बारीक हो गया, समर्पित सेंटर में जैसे हर प्रकार की सेवा करता है। तो आके कहानी बताने लगा। हमने कहा आपको भगवान ने कुछ कमी रखी है, माँ बाप है, दोनों भाई कमाते हैं, तो डॉक्टर हो, कुमार हो, समय आपके बाल बच्चे नहीं, तो ये क्यों कर रहे हो? भाई जी उसको कहा, नीचे भी दादियों को भी, बहुत लोगों को भी बताया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, सोचा सुना, चुप रहा मैं, ठीक है। फिर मैंने एक भाई को भेजा, आप उनसे पूछना कि वो पैसा देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, क्या है पूछ लो प्राइवेट। तो उसने कहा मैंने उसको दिया है, वो भाई को लूटना चाहता है, उसको मैं अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा, भगवान के बच्चे होके भगवान के बच्चों को लूटना चाहता है, उसको पाठ पढ़ाना है मुझको, और उसको कभी नहीं दूंगा। तो समझ में आया, उसने 200 रुपए में जमीन लिया और मुझे भाई को 200 रुपए में देता है, वो ना नहीं कर रहा है। फिर पता चला, तब मैंने कहा आपके 100 रुपया तो मिले, आपको प्रॉफिट नहीं मिला, तो उसके पीछे इतना आपने जीवन गवाया, समय गवाया क्यों? आज के बाद उसने पैसे दिया तो भी लेना नहीं, अगर उसने देता भी कहो बाबा के भंडार, आपको अपने पैसे मिले हैं, आपको कुछ नुकसान नहीं है। तो ये 100 रुपया के पीछे आपने अपने जीवन गवा दिया, कितने साल सफेद था, रंगीन कपड़ा इतना बारीक हो गया, उसके बाद आज दोबारा नंबर वन, ऐसे के ऐसे। हमने कहा आज के बाद कोई बिजनेस नहीं करना, यहां तुमको किसी की कमी नहीं है, आप कौन हो, कहां खड़े हो, सेंटर में रहते हो, सेंटर के पूरी सेवा करते हैं, मुख्य भाई है। तो कभी कभी लोभ पैसा इसके पीछे ब्राह्मण बच्चों के पता नहीं चलता है, कोई एक निकलता है पाठ पढ़ाने के लिए। तो कर्म बंधन, अपना समय जो कहा संगम युग का समय, क्योंकि बाबा के बच्चों में भी बहुत सुनाई देता है ये, हाँ मदद करते हैं, दया धर्म करते हैं, लेकिन एक बार आपके हाथ से गया दान, दिया तो ठीक है, नहीं तो कृष्णा अर्पण शिव बाबा के भंडारे में गया। इच्छा नहीं रखो, उसको कहा निस्वार्थ सेवा, देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, तब कहा परख कर, संकल्प आता है ये देने वाला नहीं है, ये ठीक नहीं है, नहीं भाई जी मेरे पास नहीं है, नहीं तो 100 रुपया मांगता, 5 रुपया 10 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, इतना ही है, फूल नहीं दे सकते हो पकड़ी दे दो। अपने को कर्म बंधनों से छुड़ाओ, यहां आए हम कर्म हिसाब किताब से चुक्त होने के लिए, और कर्म बंधनों में फंसे, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज भी जीवित है, कहानी नहीं। तो कैसे स्नेह में प्यार में। आप कहेंगे रोहन बाबा के बच्चे हैं, हम सेवा कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, तो मदद भी कहां तक करना चाहिए, कहां तक सहयोग देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कहां मर्यादा, हरेक की मर्यादा है। सीधा लक्ष्मण ने कहा था इसके बाहर जाना, मदद करो, दान दे दो, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इसके बाहर नहीं। तो रावण लेके गया, हरेक बच्चों को बाबा ने भी मर्यादा दिया है, किसी से बात करो, बात करने के भी तरीका है, मिलने के भी तरीका है। ये सब ज्ञान नहीं होता है ना, फिर कर्म बंधन बन जाता है, फिर कहेंगे अरे ये ऐसे है, फिर बाबा के बच्चों की बदनामी करते हो तो सद्गुरु का निंदक क्या होगा, उच्च पद पाएगा। हाँ, तो कहेंगे बाबा के बच्चे ऐसे है, आप और किसी के रावण के बच्चे तो नहीं कहेंगे ना, इसको बाबा के बच्चे कहेंगे ना। तो बाबा अगर सुनेगा चुप रहेगा ठीक लगेगा, अगर माता जी के बच्चों को कहो ये ठीक नहीं बच्चा, माता जी को अच्छा लगेगा, तो सोचना ठीक है। खजानों को कैसे यूज करना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संबंध संपर्क में आना है, शक्तियों का खजाना में रस्ते पर चलो, अपने भी बचाओ, किसी को देख लो अच्छी तरह से, शुभ बाबा ये आपके दुआएं का, शुभ भावनाएं कहा, योग में बैठते हो, योग में सकाश कहा, बुद्धि परम धाम में स्थित हो गई, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनका चित्र नहीं लाओ, आत्मा को दे रहे हम, शरीर को नहीं, शरीर को देंगे हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा ये मित्र है, वो आएगा, आत्मा को है, सकाश रूहानी सेवा है, परम धाम में बुद्धि स्थिर होने का संकल्प आपका, शक्ति बाबा की, वो संकल्प को कहां ले जाना है, वो शक्ति ले जाती है। आप यहां मोबाइल में फोन नंबर डायल करते हैं, आपका आवाज ऊपर टावर तक जाता है, और वहां से कहां, यहां से सात समुद्र पार करके, वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल, संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करता है। तब बाबा ने कहा मेरे पास आओ, सकाश ब्रह्मांड में स्थित होकर, ब्रह्मांड में तीव्र गति से काम करता है संकल्प, वहां बुद्धि चाहिए, ऊंची स्थिति पर स्थित होकर के वाइब्रेशन दे दो, नीचे नहीं जाता है, ऊंची स्थिति चाहिए। तब कहा आत्मा समझ, तो सर्वशक्तिवान ऊपर है, बाबा ने कहा मुझे ऊपर करो, इतना साल बाबा 50 साल अपना तन नहीं होते हुए भी दूसरों के तन में आकर 50 साल बच्चों की सेवा किया, उसके पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार पालना किया, अब कहता है बाबा बच्चे मेरे पास आप आओ, मैं आते आते इतना साल अभी आप इधर ही रहेंगे, अब आप आओ ऊपर। तो ऐसे शाम को योग में बैठो, नींद करने का समय नहीं, नींद रात को करते हो है ना, दिन में भी 1 घंटा करो, इधर उधर बात करने नहीं जाओ, तन को भी रेस्ट चाहिए, तो बैठो 15 आधा घंटा ही बैठो, ऐसी तपस्या करो, आपके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलना चाहिए। इसलिए बाबा ने बुलाया, बाबा कहता है मधुबन सेवा स्थान नहीं, तपस्या भूमि है ये, आपकी तपस्या से जो भी आएंगे मधुबन चुंबक जैसा लगता है, बहुत अच्छा योग लगता है, बाबा के कमरे में बैठो, शांति स्तंभ में बैठो, मधुबन आते ही सबकी बुद्धि खुल जाती है, वो आप सबका सहयोग है ना, बाबा का अकेला नहीं, अभी बाबा को मददगार बच्चे भी होंगे ना, तो ऐसी तपस्या करो, बाहर अभी बरसात है कहीं जा नहीं सकते है, है ना, विधि पूर्वक बैठो, अपने को जागृत करो, पहले आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन और परमात्मा दो ही, आप और बाप के बीच में और कोई नहीं आता है, क्यों, आप मन प्रश्न करता है, प्रश्न जवाब करते रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि के अंदर और कुछ याद आता है, नहीं तो मन चलता है मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था, ये कौन कर रहा, माया व्यर्थ विकल्प कहां से आए, बुद्धि खाली है। तब बाबा ने व्यवस्था बताया, बच्चे मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, तो उसकी विधि चाहिए, अगर प्रश्न करते जाओ मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है, बुद्धि को यूज करो, उसको कहा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान सुना उसको यूज करो, आपको कहा अभी अष्ट शक्तियां है, तो कौन सी शक्ति है बाबा, कौन, याद ही नहीं है, हाँ कल बताया था, वो किसको याद है, बुद्धि को, बाबा पवित्रता का सागर, बुद्धि याद दिलाती है, तो बुद्धि से पूछ लो, ज्ञान का उपयोग करो, ये प्रयोग है, कर सकते हैं ना, कठिन तो नहीं है। ओम शांति। अभी ताली नहीं बजाओ, बाद में, हाँ इस ग्रुप में से कम 5 क्रोध मुक्त होना चाहिए, तभी, कम से कम, ज्यादा नहीं, हाँ तो वो किसका नंबर आता है देख लो, हाँ तो कौन करके, आप अपने आप के ऊपर ताली बजाओ। हाँ, आप अपने आप बताओ। हाँ, सभी हो गया तो नंबर वन। हाँ, तो सभी हो गया तो नंबर वन, कम से कम पांच हो तो वो लिखना, मेरा नंबर बाबा ने नोट कर लिया है, भगवान के दिल पर मेरा नाम है ना, तो दिलाराम को खुश करना पड़ेगा ना।
बहुत सुंदर प्रैक्टिकल युक्तियां हमने सीखी है भाई जी से, एक बार और सभी ताली बजाएंगे। और जैसा भाई साहब ने बताया, हम अपना नाम प्यारे बाबा के दिल में, बाबा हमें याद करे, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। दाता जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, दुआओं भरा धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति।